श्रीमद्भागवतम दसवां स्कंध दसवां अध्याय और श्लोक संख्या 6 और 7। छह का तात्पर्य नहीं इसलिए 7। तो 6 में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद 7 को दोहराएंगे। तम दृष्ट्वा वृदिता देव्यो विवस्त्रा शापसंकिता वासांसि पर्यद्धु शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यको। शब्द तम नारद मुनि को दृष्ट्वा देखकर वृदिता लज्जित देव्य देवताओं की युवती पुत्रियां विवस्त्रा नंगी साप सड़िकता स्थापित होने से भयभीत बंसाती वस्त्र पर्यधु अपना शरीर ढक लिया। शीघ्रम तुरंत विवस्त्रो वे भी नंगे थे ना नहीं एव निसंदेह गुह्यको कुबेर के दोनों पुत्र। अनुवाद। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने स्थापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह ना करते हुए वे नंगे ही रहे। शोक संख्या 7। तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदानन्दोऽसुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दत्तमिदं जगो। तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दत्तमिदं जगो। तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दत्तमिदं जगो। तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो तो देवताओं के दोनों बालकों को दृष्ट्वा देखकर मदिरा मत्तो शराब पीने के कारण नशे में मस्त श्रीमद अंधो झूठी प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य के कारण अंधे हुए। सुर आत्मजो देवताओं के दोनों पुत्र तयो उनके अनुग्रह अर्थाय विशेष कृपा करने के प्रयोजन से सापम श्राप दास्यन देने की इच्छा से इदम यह जगो उच्चारित किया। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और मिथ्या गर्भ के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष साप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य। यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने साप दे डाला, किंतु अंत में नल कुबर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह साप अंततोगत्वा शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह का साप दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, तो पिता चिकोटी काटकर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इस तरह नारद मुनि ने नल कुबेर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें साप दिया। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददासि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा अभी बहुत दिनों से अभी दामोदर लीला चल रहा था। अब इस अध्याय में है कि नल कुबेर और मणिग्रीव जो कि दो पुत्र थे कुबेर का, उनका कैसे उद्धार किया कि भगवान ने, वो वाला अध्याय चल रहा है अभी। भगवान जब दामोदर लीला कर रहे थे, जब वो उखल के ऊपर भगवान को यशोदा मैया ने बांध दी, तो भगवान देखे कि दो जो है अर्जुन वृक्ष है, जामणा अर्जुन वृक्ष, उन लोगों को उद्धार करने का भगवान ने सोचा। और भगवान को ये मालूम था कि दोनों कुबेर के दो पुत्र थे, अच्छे घर के दो बिगड़े हुए बच्चे थे, उन्होंने दारू पी के शराब पी के उनको श्राप मिला था, इसलिए दो पेड़ बन गए थे। तो उनको पहले से मालूम था, इसलिए भगवान क्या किए कि बोले ये सही समय इनको उद्धार करने का, और इनका 100 साल भी हो चुका था, देवताओं के 100 साल। तो भगवान ने क्या किए, उसके उत्तर के उसको खड़े से वो रेंगते हुए दोनों पेड़ के बीच में से उस तरफ चल जाके खींचने लगे जोर से। जैसे खींचे दोनों पेड़ नीचे बहुत जोर से आवाज करके गिर गया। तो गिरते ही उसमें से बहुत जोर से आवाज आई और दो दिव्य पुरुष निकले, तेजस्वी एकदम अग्नि की तरह तेजस्वी दो निकले, भगवान को प्रार्थना की और चले गए। तो दो व्यक्ति यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इन दोनों को आपने बोला कि श्राप दिया, ये लोग ऐसा कौन सा कार्य किए कि नारद मुनि इनको श्राप दिए, और ये लोग कौन थे और इधर क्यों पेड़ बने। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। तो कुबेर के पुत्र थे, ये लोग यक्ष है और वो शिव जी का अनुचर है। तो ये लोग कैलाश में मंदाकिनी यानी जो अलकनंदा जो कि गंगा है जो हायर प्लैनेट सिस्टम में जाता है, उसमें ये लोग दोनों दो भाई नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों दो स्त्रियों के साथ निवस्त्र होके क्रीड़ा कर रहे थे। तो इनको नारद मुनि उससे जा रहे थे और इनका ये कार्य देख के उनको बहुत दुख हुआ कि लोग अच्छे घर के दो बच्चे बिगड़ गए हैं। और कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था गोविंद प्रभु का, वो बता रहे थे कि दोनों बोलते हैं कि रिजेक्टेड दोनों बेटे थे, ये लोग बिगड़े हुए बच्चे थे, कुबेर का दो बच्चे, और उनको ट्रेनिंग के लिए कैलाश में भेजा गया था प्राप्त करने के लिए, सदाचार सीखने के लिए। मगर ये लोग आके अपने जहाँ सीखने के लिए आए, जैसे बोर्डिंग स्कूल रहता है ना, स्कूल में डाल देते हैं और वो लोग वहाँ रहते हैं बचपन से, वैसे इनको डाला गया था कैलाश में, और ये लोग क्या कि अपने स्कूल में ही मस्ती करना चालू कर दिए। और जो शिव जी का वहाँ जो बगीचा था गार्डन, और वहाँ नदी में बहुत सारे फूल थे, अच्छा जगह था, और वहाँ ये लोग मजा लेने का, आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख के नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, कुबेर के दो बेटे क्या कर रहे हैं, बहुत पतित नीचे स्तर में चले गए। और ये देख के नारद मुनि उनको श्राप दिए कि ये लोग अब पेड़ के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा नग्न रहता है। हाँ, तो और उनको कुछ कोई चीज़ बाहरी चीज़ पड़ी नहीं है, हाँ वो ऐसे ही रहता है। हाँ, तो इसलिए उनको श्राप दिए कि आप दोनों जाके दो पेड़ बन जाइए। तो इसलिए ये लोग कहाँ क्रीड़ा कर रहे थे दो स्त्रियों के साथ, वो भी अलकानंदा नदी में, अलकानंदा नदी में। तो ये लोग, क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा गहराई में चला जाता है, वो स्थान का भी उनको वो भूल जाते कौन सा स्थान में और कौन सा परिस्थिति में, और भूल के वो भोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, आध्यात्मिक स्थान को भी अपने भोग में, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाने का प्रयास करता है। अभी भी हम देखते हैं, जैसे कि वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, धाम का अभी आपके बारे में बता नहीं सकता, तो भाई जब नया नया मायापुर जाना चालू किया, तो मुझे मायापुर जाने का हर बार इच्छा इसलिए हो रहा था, जय श्री श्री राधा गिरधर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, क्योंकि वहाँ जब परिक्रमा में अच्छा फीस्ट होता था, अच्छा पनीर का सब्जी, दो तीन सब्जी रहता था हर रोज फीस्ट, सुबह रसगुल्ला, पापड़ खिचड़ी, यही मन में रहता था कि मायापुर जाना है, क्योंकि वहाँ अच्छा खाने को मिलता है। और हमेशा गोविंदा के सामने स्वीट स्टॉल है, जैसे अल्टर के सामने, वहाँ ही रहता था। तो इसलिए धाम को भी हम क्या करते हैं, अपने भोग में लगा देते हैं। दिव्य धामों को भी और दिव्य वस्तुओं को भी हम, क्योंकि हमारा पूरा इच्छा भोग करने के लिए है, इसलिए जो भी हमारे सामने है सबको हम अपने भोग में लगाने का प्रयास करते हैं। तो धाम में भी जाते हैं, वहाँ बिल्डिंग फ्लैट खरीदते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बांधते हैं। अभी वृंदावन को भी कंक्रीट जंगल बना दिए, अभी वो वृंदावन नहीं था जैसे पहले था। हम भक्ति शास्त्र कह रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, पास्त्री प्रभु, कि पहले जब कुछ साल पहले, 10 साल पहले हम अगर लोही बाजार जा रहे थे तो एक जंगल था पूरा रास्ता, लगता था कि वृंदावन है, मतलब बन नहीं रहा अभी, चारों ओर बिल्डिंग से बिल्डिंग से। लोग क्या करते हैं, धाम को भी वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को भी अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, और दिव्य स्थानों को भी, क्योंकि उनका पूरा मति इंद्रिय तृप्ति में भी पूरा मग्न हो चुका है। और भारतवासियों को खास करके मालूम है आध्यात्मिक चीज़ों को कैसे भोग में लगाना, और भोग वस्तु को कैसे आध्यात्मिक करना, उन लोग को वो भी मालूम है। वृंदावन में जाके भोग करेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, थोड़ा दर्शन करके जाके जो समुद्र के बीच पे घूमेंगे, वहीं रहेंगे। हम पूरी जाके आए, क्या कि जगन्नाथपुरी में बीच में बहुत घूमे हम, स्नान किए समुद्र में, अच्छा लगा। इसलिए धाम को भी अपने इंद्र तृप्ति में लगाते हैं। और मायापुर जाते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट में खाते हैं हम, फिर स्वीट स्टॉल में खाते हैं, बहुत मजा लेते हैं, बोट में अच्छा लगता है। और जैसे कि राधा कुंड में भी भक्त लोग, राधा कुंड है और अच्छा स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है, तो प्रभुपाद के समय में भक्त लोग वहाँ जंप मार के मजा लेने लगे। तो उस समय में प्रभुपाद बोले, नहीं, ये राधा कुंड को आप उसका जो महत्व है वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ स्नान करना मना है, आचमन करके आ सकते हैं। फिर भी बहुत लोग उसको स्विमिंग पूल समझ के स्नान करते हैं। इवन मायापुर जाते हैं तो हम गंगा नदी में भी स्विमिंग करते हैं हम उसको एकदम बहुत आनंद लेते हैं। परिक्रमा में लास्ट में एक दिन पहले स्विमिंग के लिए छोड़ते हैं, तो बहुत लोग ऊपर से कूद के एकदम पूरा भीड़ हो जाते हैं वहाँ, बहुत आनंद लेते हैं। इसलिए आध्यात्मिक चीज़ों को अपने भोगों में नहीं लगाना चाहिए, तो उसका महत्व हम भूल जाते हैं। और जो आध्यात्मिक वस्तु में जितना हमको कृपा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। जैसे कि हरिनाम लेते हैं, हरिनाम लेने में अलग अलग स्तर है। अगर हरिनाम लेंगे, जैसे कि हम अच्छा गाएंगे, अगर दूसरों को अगर इम्प्रेस करने के लिए गाएंगे, तो हरिनाम तो ले रहे, सुकृति मिलेगा, मगर हमको उस फायदा नहीं मिलेगा जो कि हरिनाम लेने से होता है। और अलग अलग चीज़ें हर चीज़ों में, तो एक व्यक्ति को एक शुद्ध भक्त दर्शन कर रहा है भगवान का, और एक कोई भौतिकवादी दर्शन कर रहा है, उसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने इच्छा को पूरा करने के लिए जो भगवान के पास आता है, उनको उस स्तर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो कि एक शुद्ध भक्त को मिलता है, अच्छे भक्त को। तो इसलिए आध्यात्मिक चीज़ों को भौतिक अपने भोगों में नहीं लगाना चाहिए। और क्या करते हैं भारतवासी, कि भौतिक चीज़ों को भी आध्यात्मिक करके जीते हैं। जैसे कि धार्मिक लोग होते हैं, एक प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि एक दारू पी रहा था और दारू पीते हुए बहुत ईमानदारी से प्रणाम करके उसमें तुलसी डाल के पी रहा था। बोलता कि ये मैं भोग लगाया भगवान को, आध्यात्मिक करके पीना चाहते हैं, हर एक चीज को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, वो चाहते पाप भी नहीं लगे और भोग भी मिल जाए। और एक छोटा वीडियो दिखा रहे थे सुदर्शन प्रभु जी अपने मोबाइल में, उसमें एक व्यक्ति दारू पी रहा था, अपने ग्लास में सब डाल रहा था, तीन चार ग्लास में दारू डाल रहा था, सोडा डाल रहा था, तो भोग डाल रहा था, और मंत्र कौन सा बोल रहा था जो यज्ञ में बोलते ब्राह्मण लोग, शायद ब्राह्मण रहा होगा जन्म से, तो ओम करके मंत्र बोलते बोलते एक बर्फ डालता है स्वाहा करके, उसमें तीन ग्लास बनाया और स्वाहा करके पी लिया उसको। तो आध्यात्मिक चीज को भी वो भौतिक बना देते हैं, क्योंकि उनका पूरा मति किसमें है, इंद्र तृप्ति में है। अगर पूरा मति इंद्र तृप्ति में, हम आजू बाजू में जो भी चीज मिलेगा हम सब कुछ हम किसमें लगाएंगे, इंद्र तृप्ति में लगाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक चीजों को कैसे लगाते हैं, इवन अभी भागवतम क्लास देते हैं हम, कथा करते हैं, तो भगवान के लीलाओं को भी हम क्या करते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मेरा कुछ हो जाए, मैं भी अच्छा प्रवचन देता हूँ, अच्छा क्लास देता हूँ। एक प्रभु जी बता रहे थे अपना अनुभव कि हम क्या करते हैं, भगवान की कथाओं को भी क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके हमारे शुद्धिकरण के लिए नहीं, दूसरों के हृदय को परिवर्तन करने के लिए भी नहीं बोलते, इसलिए बोलते ताकि मेरा नाम बढ़ जाए। हाँ, वो तो होता है भक्तों के बीच में, मगर जो बाहर के लोग हैं वो तो कथा करके बहुत पैसा भी कमाते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, आध्यात्मिक वस्तु को इस्तेमाल करके अपने धन कमाई के लिए, अपने यश के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो व्यास पीठ है, हाँ, जो व्यास आसन है, उसको अपने सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन हरिनाम को भी, इसलिए बोले हरिनाम को भी इस्तेमाल करके हमको पैसा नहीं कमाना चाहिए। हाँ, इसलिए हम हमेशा हर जाके कीर्तन करते लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हाँ, हम कुछ नहीं मांगते। तो इसलिए ये आध्यात्मिक चीजों को हम अपने इंद्र तृप्ति में जब लगाएंगे, कब, जब हम अंधे हो जाते हैं ये दो चीजों से। इसमें अनुवाद में दो चीज बताया गया है कि देवताओं के दोनों पुत्र ने ऐश्वर्य तथा मिथ्या गर्भ के नशे में उन्मत्त देखकर, उनको नशे, दो नशे हो गया था, कौन सा, एक ऐश्वर्य और एक मिथ्या अभिमान। तो दोनों चीज जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो क्या करते हैं, वो मदमत्त हो जाते हैं और वो अंधा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है व्यक्ति। इसलिए इसे तो ये बाहर वालों के लिए ठीक है, इसलिए प्रभुपाद एक चैतन्य चरितमृत हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद बता रहे थे गरीब रहना अच्छा है, क्योंकि जब अमीर बनते हैं बहुत कुछ हमको भोग्य वस्तु मिलता है, अच्छा खाते हैं, अच्छे से जीते हैं, ऐसे पूर्ण जीवन जीते हैं, तभी हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि गरीब बने रहे, कम खाए और अच्छे से इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जब ऐश्वर्य आ जाता है, बहुत धन आ जाता है, तभी ये स्वाभाविक है कि आपको अहंकार आएगा ही आएगा। आप बोल नहीं सकते क्यों आया, क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है, सबका एक बाय प्रोडक्ट होता है हर एक चीजों का। इसलिए आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको मिसयूज करेंगे ही करेंगे, अगर ज्यादा धन है तो। अगर कम पैसा है तो हम सोचेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस चीज में हम पैसा लगाएंगे, अगर ज्यादा पैसा है तो सोचेंगे नहीं, सीधा इस्तेमाल करने चलेंगे, जो आया मन में वो खरीद के खाएंगे। इसलिए जब ये दो चीज आ जाता है, ऐश्वर्य और मिथ्या गर्भ, इसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इसलिए इवन भक्तों के बीच में भी हमको ऐश्वर्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये भगवान हमको धन दीजिए, मैं अगर अमीर बन जाऊंगा तो रोज मंगलाती कार में आऊंगा, अब इतने दूर से नहीं आ पाता हूँ, लोकल ट्रेन में भीड़ रहता है, ऑटो नहीं मिलता है सुबह सुभे, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं आपको भक्ति करूंगा अच्छे से। मगर ऐश्वर्य के साथ भक्ति नहीं होता है, अगर भक्ति हुआ तो वो अलग लेवल पे होता है, वो दैन्यता नहीं आता है, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं, अमार जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्य र ले। और एक भजन में बोलते हैं तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बोलते हैं कि आप ठाकुर, मैं आपका कुकुर हूँ, कुकुर मतलब कुत्ता, ये दैन्यता नहीं आएगा अगर ऐश्वर्य के साथ भक्ति करेंगे तो। फिर भी ये ऐश्वर्य अंतिम समय तक नहीं रहता है, मगर भक्ति करेंगे हम, अगर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी भी रहे तो भी हमको उससे विरक्त होना ही है, ऐसा हम उदाहरण बहुत देखेंगे, अंतिम में सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, अगर नहीं छोड़ेंगे, विरक्त नहीं होंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा। हो सकता है अभी के लिए आपके पास धन है, मगर एक समय आएगा आपको वहां से विरक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसी धन आपको भक्ति में रुकावट हो जाएगा। ये दोनों चीज ऐश्वर्य और मिथ्या गर्भ, ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए ऐश्वर्य जीवन को त्यागते हैं। इसलिए सब लोग, आप बोलेंगे मेरे पास धन है क्या करूं, अभी मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, मैं क्या कर सकता हूँ, भक्ति करना इसको छोड़ भी नहीं सकता, तो उसको क्या करते हैं, हम होते हुए भी हम उससे विरक्त रहना चाहिए, और उससे हम भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये भोगना शारीरिक स्तर से भोगना नहीं होता है, मानसिक तौर मानसिक स्तर पे हम कितना भोग भोगने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली भोग शरीर से होता ही नहीं एक्चुअली। हाँ, वो मन का एक मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल कॉन्क्रप्शन बोलते हैं। हाँ, एक ये सब भ्रम है। हाँ, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, कि हम मीठा खाते हैं, कोई रसगुल्ला खाते हैं, वो रसगुल्ला हमको ऐसा लगता है कि आनंद दे रहे हैं, हम भोग कर रहे हैं, मगर उसी वस्तु जब व्यक्ति उनके घर में कोई शरीर छोड़ दिया है, एग्जाम में फेल हो गया है, या कोई उसको बहुत गाली निंदा किया है, अपमान किया है, क्या वो रसगुल्ला उनको आनंद देगा? नहीं देगा वो। हाँ, वो खाने के बाद भी उनको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु में कुछ नहीं रखा है और इंद्रियों में भी नहीं। इंद्रिय सिर्फ क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं मन को कि ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है, और आप कितना मजा लेना चाहते हो माइंड के ऊपर है। तो ये मन का एक बहम है, भ्रम है, असली में कोई सुख है ही नहीं। इसलिए जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो उसको सारे चीज जो भोग वस्तु उसको साधारण लगता है, ये ऑटोमेटिक छूट जाता है, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए ये ऐश्वर्य और मिथ्या अहंकार, इसमें अगर हम रहेंगे तो हमेशा अंधा रहेंगे। हाँ, इसलिए हमको ये भोग जब प्रवृत्ति है, इच्छा है भोगने का, उससे दूर होना चाहिए। भोग भोग वस्तु हो सकती है साथ में है, और उसको हम अपने इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये हम बहुत सारे भक्तों में देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि एक भक्त आए थे, एक ब्रह्मचारी पुणे से आए थे प्रभु जी, तो गेस्ट हाउस दिया गया था, अपने पिताजी के साथ आए थे, तो उसमें दो बेड है, गद्दा है, मगर मैं जब उनके रूम में गया दूध देने के लिए, तो पिताजी तो गद्दे में सोए हैं, प्रभु जी गद्दा निकाल के नीचे डाल दिए और जो लकड़ी है उसके ऊपर चटाई डाल के सोए हैं। क्यों उनको, और एसी भी है फिर भी वो एसी नहीं चालू कर रहे थे। बोले भोग वस्तु होने पर भी भोग नहीं करते हो, इतना विरक्त रहते। हाँ, ऐसा रहेंगे तभी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि जब इंद्रियां और मन हम चारों दिशाओं में बह जाएगा इंद्रिय तृप्ति में, तभी हमारा ध्यान कृष्ण पे नहीं रहेगा, ये स्वाभाविक भोग में रहेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भोग इंद्रिय तृप्ति और भक्ति एक साथ में नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसलिए ये दोनों अपोजिट जाएगा। अगर जैसे कि एक तराजू है, हाँ, एक तरफ कुछ नीचे जाएगा तो और एक तरफ ऊपर उठना ही चाहिए, दोनों एक साथ में ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए हम अगर इंद्रिय तृप्ति में इच्छा है, अभी भी मैं भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, मानसिक तौर से या शारीरिक स्तर से मैं भक्ति में की प्रगति कर रहा हूँ, तो प्रभु जी बोलते हैं कि ये भक्ति नहीं है, ये भी एक प्रकार की माया है, क्योंकि आप सोचते हैं मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ। तो इसलिए हमको ये भोग छोड़ना ही पड़ेगा, ये ऐश्वर्य छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मगर क्या करें, मजबूर है। हाँ, क्या कर सकता हूँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ मगर नहीं छूट रहा है। हाँ, तो इसलिए क्या, किसका जीवन में किनका जरूरी है, साधुओं का। जब साधु आएंगे, हाँ, इस शास्त्र के ज्ञान रूपी तलवार से आपके आसक्ति को काटेंगे, तभी जाके हम इस चीज को छोड़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हो। हाँ, इसलिए नारद मुनि अच्छे से जानते थे कि इन लोगों का अभी का जो बीमारी, इनके लिए क्या चाहिए, इनको अभी ज्ञान नहीं सुना सकते। हाँ, भगवान बोले हैं सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में, अगर अभी ज्ञान सुनाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जब दो पुत्र थे कुंवर के, वो नारद मुनि को देख के, वो तो नग्न थे ही, कपड़े नहीं पहने, ऊपर से ये सोच रहे थे कि ये नारद मुनि इधर क्या कर रहा है। हाँ, जैसे कि हम अगर किसी प्रचार के लिए जा रहे हैं, कोई होटल में, रेस्टोरेंट में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, हम बोलेंगे भगवद गीता लीजिए, तो वो लोग ऐसे डाउट होकर देखते हैं, महाराज आप इधर क्या कर रहे हैं, हाँ, रेस्टोरेंट में आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो डाउट कर रहे थे कि नारद मुनि यहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऐसा उनका मनोवृत्ति था, इसलिए उनको नारद मुनि क्या किए, इनके दशा को देख के उनको श्राप दे दिए कि आप जाके दोनों पेड़ बन जाए, आपका व्यवहार पेड़ के बराबर है। और दो स्त्रियां थे, वो शायद पिए नहीं थे, इसलिए वो दोनों कपड़े पहन लिए, मगर दोनों बहुत पी चुके थे और इनका आंख घूम रहा था चारों ओर, इसलिए वो देखते हुए भी नारद मुनि को नेग्लेक्ट किए उनको, और कपड़े पहने नहीं, क्योंकि दोनों के पास बहुत पैसा था। हाँ, कुबेर है जो धन का इंचार्ज है, हाँ, बहुत पैसा है, इसलिए उनको बहुत अहंकार था, अभिमान था। हाँ, स्कूल में आके भी, शिक्षा के लिए आके भी इधर अपना चालू कर दिए, क्रीड़ा कर रहे थे, इसमें लिखते पिछले अनुवाद में। तो इसलिए ये ऐश्वर्य जब मिथ्या अहंकार, मिथ्या गर्भ, जब तक ये नशा उतरता नहीं व्यक्ति को, तब तक वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए उनको नारद मुनि कह के श्राप दिए, पनिशमेंट दिए। क्या पनिशमेंट दिए, कि आप दोनों पेड़ बन जाओ, कब तक, 100 साल तक देवताओं का। इसलिए जो व्यक्ति, हम बोलेंगे प्रभु जी मैं नंबर बनना चाहता हूँ, आज से नंबर बन गया, मेरा अहंकार ऐश्वर्य को छोड़ के मैं नंबर बन गया, वो नम्रता नहीं होता है, वो क्या होता है, कुछ देर के लिए रहता है, बाद में वापस पुनर्जागृत हो जाता है तुरंत, जब परिस्थिति वैसा प्रतिकूल परिस्थिति आता है। तो इसलिए उसके लिए हमको कुछ कड़क दंड चाहिए, और जब जिससे हम पछताएंगे बहुत, अच्छा दंड नहीं मिलेगा तो हम पछताएंगे नहीं, और जब तक हम पछताएंगे नहीं तो हमको ये नम्रता, जो असली ये ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो नहीं आएगा हमको। इसलिए क्या किए, उनको दोनों को पेड़ बना दिए। अगर सिर्फ पेड़ बना देते और उनको याद नहीं होता, जब उनका उद्धार होने के बाद हो सकते वो बोलते कौन है ये, हम पेड़ बने थे क्या, ऐसा पूछ सकते थे। इसलिए नारद मुनि क्या किए, बोले कि आपको याद रहेगा कि आप पेड़ बने करके और पिछले जन्म में आप दो देवता थे करके। 100 साल तक इनको ये याद था कि हम पेड़ बने हैं, देवता था, और कितना दुख होता होगा हा? हम पेड़ बन के खड़े हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम कुछ हिल भी नहीं सकते। हम बार बार ये सोच के ये पश्चाताप करते करते वो ताप में उनके सारे अनर्थ जल गए, सारे पाप उनका जल गए, इसलिए वो भगवान का दर्शन कर पाए बाद में। और नारद मुनि क्योंकि श्राप दिए थे, और भक्तों का श्राप श्राप नहीं होता है। जैसे कि भगवान शुद्ध है, प्रॉपर तात्पर्य में बताते हैं, अगर भगवान शुद्ध है और भगवान कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही रहता है। अगर पुतना का उनका बद्ध कर दिए मगर फिर भी उनका उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान वो पूर्ण है और वो पवित्र है, जिनको भी छुएंगे वो भी शुद्ध हो जाएंगे। वैसे भक्त भी वैसे ही होते हैं, वो कभी किसका बुराई कर ही नहीं सकते, वो कुछ भी करें, वो श्राप भी दें, आशीर्वाद दें और गाली भी दें, फिर भी वो हमारा अच्छाई के लिए होता है। इसलिए कहावत है ना, भक्तों का गाली घी का नाली, हाँ ऐसा बोलते हैं। इसलिए भक्तों का गाली सुनने में कोई बुराई नहीं है, उसमें हमारा ही अच्छा ही होता है। हो सकता है भक्त हमारे बारे में सोचते हो कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है, इसलिए उसके हिसाब से वो हमको गाली दिए रहेंगे, इसलिए हमको सुन लेना चाहिए। और उसको स्वीकार करेंगे तो हमको भगवान का दर्शन जरूर होगा। क्योंकि इन लोग का दोनों को नारद मुनि आशीर्वाद दिए, कृपा किए, इसलिए भगवान दर्शन दिए। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, बताते हैं जब भगवान जा रहे थे उन पेड़ के बीच में, जब गए तब सोच रहे थे कि दोनों का नारद मुनि ने बोला था दर्शन दूंगा करके, भगवान दर्शन नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर दोनों प्रकट होने के बाद, दोनों युवक उस पेड़ से निकलने के बाद, फिर भगवान बोले मैं आपको इसलिए दर्शन दिया क्योंकि मेरे अच्छे भक्त, हाँ मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने आपको बोला था कि मैं दर्शन दूंगा। इसलिए भक्तों की कृपा से ही भगवान को प्राप्त हम कर सकते हैं। और ऐसे जीवन, ऐसे जो अंधे होके हम जी रहे हैं कि हम आंख होते हुए भी दिखता नहीं हमको, हम तो उस स्तर से हमको कौन निकाल सकता है, कोई भक्त, कोई शुद्ध भक्त ही हमको उस स्तर से निकाल सकता है। और उनके बातों को अगर हम मानेंगे तो हम जरूर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भक्तों को नारद मुनि का अलग स्टाइल है लोगों को सुधारने का, और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय पे उनको अलग अलग उपदेश देते हैं। वो एक तरफ से नहीं बोलते, जैसे कि हम मंदिर में कोई भी आता हम बोलते हैं चांद हरे कृष्णा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि शिव जी भगवान नहीं है, ये है, जो फिलोसफी स्ट्रेट बोल देते हैं, हो सकता है कोई आए या नहीं आए। बहुत लोग नाराज होकर चले जाते हैं, क्या शिव जी को इतना गाली देते हैं आप लोग, शिव जी भगवान नहीं बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट नहीं बोलते, वो स्तर के हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि वृक्षास हो रहे, वो बोले कि नारद मुनि को पूछे कि बताइए मुझे किसका पूजा करना चाहिए, तो नारद मुनि ये नहीं बोले कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, वो क्या बोले शिव जी का आराधना करो, आपको जो चाहिए उसका पूरा हो जाएगा। तो शिव जी का आराधना जो तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न करके एक वर मांगे हो कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो पहले वो शिव जी को ही ट्राई करने का प्रयास किए क्योंकि उनको पार्वती चाहिए था। तो शिव जी भागते भागते विष्णु के पास गए, फिर भगवान विष्णु ने ट्रिक करके उनको खुद के हाथ खुद के सर पे रखे हो जल गए। तो इसलिए नारद मुनि अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग उपदेश देते हैं, मगर उनका फिलोसफी सेम है, एक ही है, मगर वो सर के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूछते हैं आपका एज कितना है, एज के हिसाब से मेडिसिन देते हैं ना, अगर हैबिट हो जाए बच्चे को दे दिए तो उनको वो शरीर छोड़ सकते हैं, मर जाएंगे वो, हाँ उसको सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को मिले तो ध्रुव महाराज को क्या बोले, ध्रुव महाराज क्लियरली बोल दिए कि मुझे राज्य चाहिए, हाँ और उस चीज में जा रहा हूँ मदद करने के लिए, नहीं तो जाइए यहाँ से, हाँ स्ट्रेट बोल दिए। तो नारद मुनि उस हिसाब से उनको जाइए आप जाके जंगल में तपस्या कीजिए, और 6 महीने वो भगवान को प्राप्त कर लिए थे। और इसमें कोई नुकसान नहीं है भगवान का भक्ति में, जैसे ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, उनको इतना उसको क्या बोलते हैं, उनको रिवेंज करना था, उनको बदला लेना था उनको, हाँ वो बोलते थे कि मैं भले ही उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मगर उनसे भी अधिक राज्य और अधिक संपत्ति मेरे पास होना चाहिए, ये इच्छा से हो जाए गए थे। और बाद में भगवान को दर्शन करने के बाद वो बोल दिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कांच कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे तो हीरा मिल गया, बोले फिर भी भगवान उनको 30,000 साल तक राज्य भोग करने दिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्ति करता है उनको भगवान जो ये भोग ऐश्वर्य है ना, ये ऐसे ही देते हैं। जैसे कि हम कुछ खरीदते हैं, लैपटॉप टीवी खरीदते हैं, उसमें कवर फ्री में आता है, अगर पानी खरीदते तो बोतल फ्री में मिलता है, बहुत दिन तक यूज करते हैं उसको, वैसे हम भक्ति करेंगे तो ये बाय प्रोडक्ट्स है, ये सब ऑटोमेटिक मिलेगा, उसके लिए हमको भागना नहीं चाहिए। तो इनको भोग भी भगवान देते हैं, इसलिए देते हैं कि अगर नहीं देंगे तो शायद हो सकता है आगे लोग सोचेंगे कि भगवान का भक्ति करेंगे सब ले लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं, भगवान बहुत ऐश्वर्य देते हैं। प्रभुपाद जी भी बताते हैं, भगवान मेरे से सब ले लिए परीक्षा करने के लिए, वापस मेरे मुझे सब कुछ दे दिए, इतना दिए इतना दिए, जिस विदेशी लोग आके भारतवासियों को अपने नौकर बनाए थे, उसी विदेशी लोग मुझे अभी मेरा नौकर बन गए। सब लोग मुझे उठा के पालकी में लेते हैं, मसाज करते हैं, मेरे लिए प्लेट बनाते हैं, मेरा कपड़ा धोते हैं। हाँ वही अंग्रेजी लोग अभी मेरे सेवक बन गए। इतना भगवान ऐश्वर्य दिया है, और भगवान अभी इतना ऐश्वर्य दिया प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी 24 घंटे पूजा होता है। आज यहाँ अभी हुआ अलग कंट्री में, उसी टाइम पे अभी गुरु पूजा होता रहेगा किधर, ऐसा पूरा दिन उनका पूजा चलता रहता है। और उनका गुणगान सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं मुस्लिम है करके निंदा करते हैं, नहीं, इस्कॉन को और प्रभुपाद जी को सब लोग गुणगान करते हैं, हाँ ये स्वामी जी अच्छे हैं करके। इतना ऐश्वर्य भगवान ने प्रभुपाद जी को दिया है, हाँ किस चीज का कमी नहीं है। तो एक वीडियो में देख रहा था वृंदावन में प्रभुपाद जी का, तो पहली बार देखा वो वीडियो, एक कमरे के अंदर प्रभुपाद जी और कोई कैमरा से शूटिंग कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कुछ प्रसाद ले रहे हैं, तो थोड़ा कैमरा नजदीक जब जूम करके लिए, हम गोवर्धन को भोग लगाते हैं ना बहुत सारा प्रसाद, ऐसा एक कोने में इतना सारा प्रसाद, अलग अलग व्यंजन, इतना सारा आइटम रहेगा पता नहीं, एक कोने में भरा हुआ है, और प्रभुपाद जी शांति से बैठ के सबसे एक एक चख रहे। देखिए सन्यासी कितना सारा भोग्य वस्तु मिलता है, उनको कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी क्योंकि भक्ति की भगवान भोग बहुत देते हैं, जितना चाहिए उतना लीजिए, हाँ मगर फिर भी व्यक्ति विरक्त रहता है, और जो व्यक्ति विरक्त है उसका ही अधिकार है ये सब लेने का। हाँ जो व्यक्ति आसक्त है उससे वो छीना जाता है, अगर आप नहीं खुद नहीं छोड़ेंगे तो आपको प्रकृति खुद छीन के ले लेगा। इसलिए ऐश्वर्य ये और मिथ्या गर्भ ये दोनों हमको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छूटता है, हम भक्त है तो क्या करते हैं भगवान, ऐसा नहीं चलो तुम अहंकारी हो तुमको अभी भगवदम नहीं आ सकते, नहीं, भगवान प्लान करते हैं, क्योंकि हमारा मंद बुद्धि है इसलिए भगवान अरेंज करते हैं इसका अहंकार को कैसे निकालना है। हाँ जैसे कि अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, तो जैसे वो ब्राह्मण का सारे पुत्र विष्णु ले लिए, तभी अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे मैं वापस लेके आऊंगा, मैं बचा दूंगा, मगर उनका अहंकार को भगवान नष्ट किए थे। हाँ जैसे हनुमान जी को बुलाने के लिए गरुड़ जी को भेजे, जगन्नाथ जी बोले जाइए हनुमान को बुला के लाइए मुझे बात करना है, तो गरुड़ जी जागे हनुमान के पास, बोले हनुमान जी चलिए आपको बुला रहे हैं जगन्नाथ, तो बोले अच्छा बुला रहे हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो बैठिए पीठ पे मैं लेके जाऊंगा जल्दी जाना है, तो गरुड़ जी को बोले आप जाओ पहले मैं आता हूँ। हाँ गरुड़ जी एकदम स्पीड से आके जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर जब किए, देखे हनुमान जी बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनको अहंकार था कि मैं ही सबसे तेजी जाता हूँ, उनको पता चला कि हनुमान जी उनसे भी स्पीड है, तो उनका अहंकार वहाँ नष्ट हो गया। तो एक बार सुदर्शन का भी बहुत अहंकार हो गया था, मैं बहुत करीब हूँ भगवान का, तो हनुमान जी को बुलाने गए थे वो भी एक बार, तो हनुमान जी आने से पहले सुदर्शन क्या किए, पूरा मंदिर का राउंड 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 घूम रहे थे, इतना स्पीड घूम रहे थे तो हनुमान जी को जाने नहीं दे रहे थे, तो हनुमान जी वहाँ इतने सारे हजारों हाथ पकड़ करके चारों ओर सुदर्शन चक्र घुमाने लगे, वो देख के सुदर्शन घबरा गए, हाथ जोड़ गए, अरे हनुमान आप मेरे से भी आगे है। तो फिर भगवान वहाँ बोले थे सुदर्शन को, अब ज्यादा अहंकार हो गया है, लकड़ी बन के बाजू में बैठो, आप घूमते रहोगे तो आपका दिमाग भी घूमता रहेगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों को अहंकार को नष्ट करते हैं। हो सकता है हमको दर्द हो, जैसे ऑपरेशन करते हैं कुछ घाव हो गया तो दर्द होता है और बाद में ठीक हो जाता है, तो इसलिए हमको ये भगवान का ऑपरेशन, भगवान जो करना चाहते हैं भक्तों के माध्यम से, उसको स्वीकार करना चाहिए, और उसको स्वीकार करेंगे तो हम जल्दी शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध होकर हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों दर्शन किए भगवान का, और दोनों ये ऐश्वर्य मिथ्या गर्भ से मुक्त हो गए, और भगवान का दयनीय भाव जब प्रकट हो गया तभी ये, जब नम्रता आती है तभी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। अगर आप अहंकार है तो क्या प्रार्थना करेंगे, जब तक हम कृतज्ञ नहीं है हमको क्या दिया है व्यक्ति और भगवान हमको क्या मदद किए हैं, तब तक हम प्रार्थना कैसे करेंगे। इसलिए दयनीय भाव आना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि भगवान हमारे लिए क्या किए हैं, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, तभी समझ सकते हैं जब हम झुकेंगे भगवान के सामने, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हम भगवतों में कितने सारे प्रार्थना देखते हैं, और ये लोग आगे जाके प्रार्थना करेंगे दोनों, हाँ प्रार्थना करके फिर अपने चले जाएंगे, जहाँ से आए थे वहाँ स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। इसलिए हम इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये अहंकार और ये ऐश्वर्य ये दोनों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि दोनों व्यक्ति को अंधा कर देता है, फिर हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इससे दूर रहना ही अच्छा है, और तभी जाके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वो भी साधुओं की कृपा से। नारद मुनि जैसा साधु आएंगे तो हमारा जरूर उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।